दिन भर तारीख 4 मई दिन शुक्रवार, मैं हूं वात्सल्य राय। इस साल नहीं दिया जाएगा साहित्य का नोबेल पुरस्कार, विवादों में घिरी स्वीडिश अकादमी ने दी जानकारी।
Vi har bestämt oss för att inte dela ut ett pris i år. Och det har vi gjort efter långa...
उत्तर प्रदेश के आगरा में तूफानी हवाओं ने किस तरह मचाई तबाही, सुनवाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट।
ये समझो कि जैसे हम तो पागल हो गए थे, जैसे ये दब गए तो इनको बचाया, तो एम्बुलेंस की बोला था हमने, तो कोई भी ऐसे सुविधा नहीं थी।
और विवेचना में रेहान फजल से सुनिए इसराइली इतिहास की सबसे दमदार नेताओं में से एक गोल्डा मेयर की कहानी।
She was very grandmother like to everybody in Israel. I mean, look how she dressed.
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार आदर्श राठौर से। इस साल साहित्य का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा क्योंकि विजेताओं को चुनने वाली स्वीडिश अकादमी एक सेक्स स्कैंडल में फंस गई है। अकादमी की एक सदस्य के पति पर 18 महिलाओं ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। जिस शख्स पर ये आरोप लगे हैं वो अकादमी के फंड से एक प्रोजेक्ट चला रहा था। इसके बाद से अकादमी के इस महिला सदस्य और 5 अन्य सदस्यों ने पद छोड़ दिया है। अकादमी का कहना है कि वो अपने नियमों में बदलाव करेगी ताकि अगले साल के पुरस्कार के लिए समय रहते अपना सम्मान वापस हासिल कर सके। इराक के शीर्ष शिया धर्मगुरु अयातुल्ला अली सिस्तानी ने मतदाताओं से अपील की है कि अगले हफ्ते होने जा रहे चुनावों में भ्रष्ट नेताओं को न चुनें। अयातुल्ला सिस्तानी ने कहा कि इराक की जनता को उन लोगों के जाल में नहीं फंसना चाहिए जो या तो भ्रष्ट हैं या फिर नाकाम। सिस्तानी का बयान उनके सहयोगी शेख अब्दुल मेहदी अल करबलाई ने पढ़ा। हम कहना चाहते हैं कि चुनाव में खड़े हुए उम्मीदवारों के इतिहास की हमें जानकारी होनी चाहिए, साथ ही उन उम्मीदवारों पर भी नजर रखनी चाहिए जो पहले चुने जा चुके हैं। हमें भ्रष्ट और नकारा लोगों के जाल में नहीं फंसना चाहिए, भले ही उन्हें पहले मौका मिला हो या नहीं। ये थे इराक के शिया धर्मगुरु सिस्तानी के सहयोगी के शब्द। चेक रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रपति मिलो जेमन की टिप्पणी पर स्पष्टीकरण दिया है। जेमन ने कहा था कि पूर्व रूसी जासूस सर्गेई स्क्रिपल पर हमले में इस्तेमाल किए गए नर्व एजेंट जैसा ही एक एजेंट पिछले साल उनके देश चेक रिपब्लिक में तैयार किया गया था। रक्षा मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि A-230 नाम के एजेंट को उनकी प्रयोगशाला में टेस्ट किया गया था, मगर उसका कहना है कि इसकी मात्रा इतनी कम थी कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत इसे नर्व एजेंट का उत्पादन नहीं माना जा सकता और इसे तुरंत ही नष्ट कर दिया गया था। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर को टालने के इरादे से बीजिंग में हुई वार्ता संपन्न हो गई है। चीन के सरकारी मीडिया का कहना है कि दोनों पक्ष कुछ मामलों में सहमति बनाने में सफल रहे हैं, मगर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। सरकारी चैनल ने कुछ इस तरह से खबर की जानकारी दी। दोनों पक्ष मानते हैं कि स्थिर और स्वस्थ आर्थिक रिश्ते चीन और अमेरिका के लिए बहुत जरूरी हैं और आपसी संवाद के माध्यम से मसलों को सुलझाया जा सकता है। निर्यात, द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर दोनों पक्षों ने खुलकर विचार रखे। कई बातों को लेकर सहमति बनी है। दोनों पक्ष जानते हैं कि कुछ बातों को लेकर जो असहमतियां हैं उन्हें सुलझाने के प्रयास जारी रहने चाहिए और संवाद बना रहना चाहिए। ये थे चीन के सरकारी चैनल की एंकर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने यहूदियों और होलोकॉस्ट के बारे में दिए गए बयान की आलोचना होने के बाद खेद प्रकट किया है। एक बयान में उन्होंने यहूदी विरोधी भावना की आलोचना करते हुए कहा कि होलोकॉस्ट इतिहास का सबसे घृणित अपराध था। उन्होंने कहा कि वो यहूदी धर्म का पूरा सम्मान करते हैं। इससे पहले एक भाषण में उन्होंने कहा था कि यहूदियों की बैंकर और फाइनेंसर्स की भूमिका होलोकॉस्ट के लिए जिम्मेदार थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने इस बात से इनकार किया है कि राष्ट्रपति ने पेंटागन को दक्षिण कोरिया में मौजूद अमेरिकी सैनिकों की संख्या घटाने के लिए कहा है। यह बयान न्यूयॉर्क टाइम्स की उस रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें दक्षिण कोरिया में मौजूद 23,000 अमरीकी सैनिकों की संख्या घटाने पर विचार का दावा किया गया था। ट्रंप अगले महीने उत्तर कोरिया के सुप्रीम नेता किम जोंग उन से मुलाकात कर सकते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कार्ल मार्क्स की 200वीं जयंती पर भाषण देते हुए कम्युनिस्ट दार्शनिक की तारीफ की और उन्हें आधुनिक समय का सबसे महान विचारक बताया। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव। दिन भर की शुरुआत एक अहम अंतर्राष्ट्रीय खबर से। इस साल साहित्य का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। इसकी वजह यह है कि नोबेल पुरस्कार तय करने वाली समिति विवादों में घिरी हुई है। समिति की एक सदस्य कैटरीना फ्रॉस्टेंसन के फोटोग्राफर पति झांग क्लोड ऑर्नो पर 18 महिलाओं ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। वो फ्रांस के रहने वाले हैं और स्वीडिश अकादमी से मिलने वाले फंड से एक कल्चरल प्रोजेक्ट चलाते हैं। ऑर्नो खुद पर लगे आरोपों से इनकार करते रहे हैं। उनकी पत्नी कैटरीना पद छोड़ चुकी हैं, लेकिन पहले समिति ने उन्हें हटाने के खिलाफ वोट किया था। उत्पीड़न और नोबेल विजेताओं के नाम लीक करने को शुरू हुए विवाद से संस्थान में दरार पड़ गई और इस्तीफों का दौर शुरू हो गया और विवाद लगातार गहराता चला गया। तब से स्वीडिश अकादमी की प्रमुख सारा डानियोस और 4 अन्य सदस्यों ने भी इस्तीफा दे दिया है। अकादमी का कहना है कि इस साल का पुरस्कार अगले साल के पुरस्कार के साथ दिया जाएगा। अकादमी के सदस्य और लेखक आनर्स ऑल्सन ने मीडिया को बताया,
Vi har bestämt oss för att inte dela ut ett pris i år. Och det har vi gjort efter långa och intensiva.
लंबी और गहन चर्चा के बाद हमने फैसला किया है कि इस साल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। हमें लगा कि फिलहाल दुनिया भर में एक आदमी को लेकर भरोसा काफी कम है और यही वजह है कि हम फिलहाल पुरस्कार नहीं दे रहे हैं। ये थे आनर्स ऑल्सन के शब्द। दुनिया भर के साहित्यकारों के बीच नोबेल की गिनती सबसे आला पुरस्कारों में होती है। विश्व युद्ध और साल 1936 के अलावा ये पुरस्कार लगातार दिए जाते रहे हैं। ऐसे में इस साल पुरस्कार नहीं दिया जाना कितनी बड़ी घटना है, ये सवाल मैंने किया फ्रांस की राजधानी पेरिस में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार वैजू नरावने से।
ये तो बहुत ही बड़ी घटना हुई है और ये घटना इंडिकेशन है कि हमारा जो जमाना है बदल रहा है, क्योंकि औरतें आके कहने लग गई है कि हमारे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुई, हमारे साथ सिर्फ छेड़छाड़ ही नहीं हुई लेकिन उससे बढ़कर भी चीजें हुई हैं। इसके खिलाफ अब औरतें अपना आवाज उठाने लगी है। ये सारी मी टू मूवमेंट, बाकी जो भी मूवमेंट है, जैसे इंडिया में पिंजरा तोड़ मूवमेंट आ गई है, वो वेमेन्स लिबरेशन की मूवमेंट है और इसकी वजह से नोबेल जो कमेटी है वो सोशल प्रेशर की वजह से अब रिस्पॉन्ड करने लग गया है।
ये जो फोटोग्राफर हैं फ्रांस के झांग क्लोड ऑर्नो, जिनकी वाइफ इस एकेडमी की जो कमेटी है जो डिसाइड करती है नाम, उसकी मेंबर रही हैं कैटरीना फ्रॉस्टेंसन। ये मामला 30 साल पुराना मामला है और सामने भी लगभग नवम्बर से ये सामने है, तो क्या वजह रही कि इसको प्रॉपर हैंडल नहीं किया गया?
जी हाँ, क्योंकि एक तो एकेडमी को कोई भी चीज बाहर चले जाए उससे बहुत डर है। हमने देखा जैसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी या फुटबॉल कमेटी, जो काफी सारी जो इंटरनेशनल कमेटीज हैं जहां पर हाई लेवल डिसीजन लिए जाते हैं, वहां पे टेंडेंसी ये हुई है कि चीजों को दबा देना। लेकिन इस वक्त क्या हुआ है कि मामला इतना बढ़ गया है तो अब नोबेल कमेटी को बहुत मुश्किल हो गया है बात दबाने की।
जो विनर्स हैं उनके नाम लीक करने की भी बात आ रही है, जिसको लेकर एक डिवीजन बना कमेटी में।
कई बार ऐसे हो चुका है कि इनको अपनी बीवी से समझ आ जाता था कि कौन सा चॉइस किया गया है और वो पीछे से जर्नलिस्ट को लीक करवा देते थे कि विनर कौन है करके, शक बहुत था। इस वक्त क्या हुआ है, दोनों चीजें आगे चली आई हैं कमेटी के सामने और ये अब मामले को आगे दबा नहीं पा रहे हैं।
अब पैटर्न भी कह रहे हैं कि नियमों में बदलाव किया जाएगा, क्योंकि कमेटी के जो मेंबर्स होते थे वो फॉर लाइफ होते थे। इस तरह से चाहे वो हेड हो इसकी सारा डानियोस या बाकी लोगों ने जो रेजिग्नेशन दिया है, उसका मायना नहीं है जब तक कि नियम नहीं बदला जाता है।
बहुत सारे ऑथर्स की कमिटीज हैं, जैसे पेन इंटरनेशनल देख लीजिए, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए मिलिटेट करती हैं, उन सब से अब रिक्वेस्ट आई है कि ये लाइफ मेंबरशिप जो है कमेटी की उसको बदल दिया जाए, क्योंकि अगर किसी को आपने लाइफ के लिए चूज कर लिया तो इसके खिलाफ आप कोई भी मेजर नहीं ले सकते।
दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित ये पुरस्कार माना जाता है, इसकी साख को जो झटका लगा है क्या उससे उबरने की आप कोई उम्मीद देखती हैं?
नोबेल का जो प्रेस्टीज है उसमें तो ठेस पहुंची है। लोग कह रहे हैं अभी बहुत लेट नहीं हुआ, अगर वो जल्दी से कदम उठाएं तो एक साल भर में इस पुरस्कार का जितना सम्मान और जितना इन्फ्लुएंस होता था वो दोबारा हो जाएगा।
जानकारी दे रही थी पेरिस से वरिष्ठ पत्रकार वैजू नाराव ने।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना,
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
अगली खबर भारत से। उत्तर प्रदेश में बुधवार को चली तेज हवाओं की वजह से कई जिलों में भारी नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा तबाही आगरा जिले में हुई, यहां मरने वालों की संख्या भी सबसे ज्यादा है। बीबीसी संवाददाता सलमान रावी पीड़ितों का हाल जानने आगरा पहुंचे, सुनिए उनकी ये रिपोर्ट।
बुधवार की देर शाम आए भयंकर तूफान ने ऐतिहासिक आगरा के देहाती इलाकों का नक्शा ही बदल कर रख दिया है। 132 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब रेत भरी आंधी इस इलाके से टकराई तो लोगों ने कुदरत की इस कहर के सामने खुद को बेबस पाया। डूंगरवाला गांव में मातम पसरा है। यहां एक ही परिवार के तीन लोग घर के मलबे के नीचे दबकर मर गए, जिसमें से एक बूढ़ी महिला और उनके दो नाती शामिल थे। यह आगरा की खैरागढ़ तहसील का इलाका है। यहाँ से कुछ ही दूर है बढ़ेरा गांव। इस गांव ने काफ़ी तबाही देखी है। यहाँ मेरी मुलाकात धम्बी सिंह से हुई जो तूफान के दौरान खुद बुरी तरह घायल हो गए थे, मगर उनके पिता की मलबे में दबकर मौत हो गई।
पहले थोड़ी हवा सी आई थी, उसके बाद में क्या ना पोछार आ गई तो हम बाहर बैठे थे। हमने सोचा कि पोछार आ रही है, तबीयत खराब हो जाएगी, बड़े बूढ़े भी थे तो हमने सोचा अंदर ले लेते खटिया को। वो चारपाई अंदर ली थी हमने तो कुछ टाइम बाद ऐसा था ऊपर से दीवार गिरी थी, उससे सिंगल दीवार जो हमारी छत थी वो भी गिर गई थी हमारे ऊपर, तो ऐसे हादसा हो गया था उसके दौरान पड़ा के साइड में भी ये हादसा।
इसी गांव के सुरेंद्र सिंह ने तूफान में अपना बेटा और एक भतीजा खोया है, जबकि उनके एक और बेटे को सर पर गंभीर चोटें आई हैं। आगरा के ग्रामीण SP अखिलेश भदौरिया जान और माल के नुकसान का जायजा लेने खैरागढ़ पहुंचे। उनका कहना था कि ग्रामीणों को तूफान की चेतावनी पहले दे दी गई थी, क्योंकि ग्रामीण इलाके में घर कंक्रीट के नहीं बने होते हैं, इसलिए जान और माल का ज्यादा नुकसान हुआ।
खैरागढ़ में काफी लोग घायल भी हैं जिनका इलाज चल रहा है, और लगभग 2 दर्जन से ज्यादा खैरागढ़ में दुर्भाग्यपूर्ण जनहानि हुई है और मकान भी काफी गिर गए हैं, पेड़ बिजली खंभे जैसा आप देखे।
पूरे उत्तर प्रदेश में आगरा ही एक वो जगह है जहाँ पर सबसे ज्यादा लोगों की मौतें हुई।
ये बताइए कि काफी बहुत ही संकट भरी घड़ी होगी वो आपके लिए, वो किस तरह से आप लोग दौड़ दौड़ के एक एक से दूसरी जगह जा रहे होंगे?
नहीं, जैसे हम
खबरें मिल रही होंगी,
हमको जैसे लग रहा था कि जैसे बहुत, जैसे ये समझो कि जैसे हम तो पागल हो गए थे, जैसे इस तरफ ले जा रहे थे, हम तो ये दब गए तो उनको बचाया तो फिर जैसे पता पड़ा था कि उनको भी निकाला था, फिर हम जैसे गए थे पेड़ पे टूट गए थे, बहुत ही ज़्यादा बस कंसेंट में हम ले गए थे उनको, तो हम जैसे हॉस्पिटल में पहुँचे थे वहाँ पर कोई भी जैसे एम्बुलेंस की बोला था हमने तो कोई भी ऐसे सुविधा नहीं थी, और पुलिस वाले के भी पास फ़ोन किया तो वो कह रहे थे अभी आ रहे हैं तो कोई आया।
तूफान कितनी देर में रुका?
1 घंटे तक चला था, हाँ चलो 1 घंटे 1.5 घंटे की समथिंग रखा था, ठीक है, और फिर तूफान करीबन 15 मिनट चला था, उसके बाद वो ले आए थे पुलिस, जो फसल वसल सारी नष्ट हो गई किसानों की, उसके बाद जो तूफान आया था
जानवर भी मरे क्या?
हाँ, जानवर भी मरे थे, और भी गाँव में मकान टूट पड़े हैं। हाँ, फिर जो हम यहाँ पर आए थे इनकी जो महिला थी वो किल्लाई, जब अपने घरों से आए थे इनको बचाया।
तूफान आने का सिलसिला अभी थमा नहीं है। मौसम विभाग ने एक बार फिर इस इलाके के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगले 72 घंटे में वैसा या फिर उससे भी ज्यादा तीव्रता वाला तूफान इस इलाके से टकरा सकता है। सलमान रावी, BBC आगरा।
BBC इंडिया बोल।
पाकिस्तान बनने के 70 साल बाद भी मोहम्मद अली जिन्ना पर भारत में राजनीति क्यों? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जिन्ना की तस्वीर हटाने की मांग का असली मकसद क्या है? इस बार इंडिया बोल में इसी विषय पर चर्चा होगी। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 5 मई शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 या 1800-102-7001 पर।
BBC इंडिया बोल।
और अब वक्त है विवेचना का। गोल्डा मेयर की गिनती आधुनिक इतिहास की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में की जाती है। इसराइल के निर्माण में उनकी बहुत जबरदस्त भूमिका थी। बाद में वो इसराइल की चौथी प्रधानमंत्री भी बनी। उन्हीं के नेतृत्व में इसराइल ने मिस्र और सीरिया के खिलाफ यौम किप्पूर की लड़ाई लड़ी, जहां उनकी तारीफ के साथ साथ काफी आलोचना भी हुई। गोल्डा मेयर की 120वीं जयंती पर उनके जीवन के कुछ पहलुओं को याद कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी रेहान फजल।
Actually, there is really only one problem. Are the Arab states prepared, if not to welcome us?
वास्तव में असली समस्या सिर्फ एक है। क्या अरब देश इस बात के लिए तैयार है कि वो हमारा स्वागत भले ही ना करे, इस बात को तो कम से कम माने कि हमारा भी कोई अस्तित्व है और वो हमारे साथ शांतिपूर्ण ढंग से रहने के लिए तैयार हैं। जब कभी शांति आएगी तो हम शायद अरबों को इस बात के लिए माफ कर दें कि उन्होंने हमारे बेटों को मारा है, लेकिन हम उन्हें इस बात के लिए कभी माफ नहीं करेंगे कि उन्होंने हमें उनके बेटे मारने के लिए मजबूर किया है।
ये हैं गोल्डा मेयर, जिनके बारे में एक बार इसराइल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियों ने कहा था कि वो मेरे मंत्रिमंडल की अकेली पुरुष थी। और किसी संदर्भ में ये बात किसी भी महिला को अच्छी लगती, लेकिन इसको सुनते ही गोल्डा मेयर दांत पीसने लगती थी। उनका मानना था कि किसी भी काम को किसी शख्स के लिंग से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। गोल्डा मेयर का जन्म 3 मई 1898 को यूक्रेन की राजधानी कीव में हुआ था। गोल्डा मेयर उन लोगों में शामिल थी जिन्होंने 1948 में इसराइल की स्वतंत्रता के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। 1965 में उन्होंने कई पदों पर काम करने के बाद सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था। 1969 में जब इसराइल के तीसरे प्रधानमंत्री लेवाई एशकॉल की मौत हुई तो उन्हें इसराइल का प्रधानमंत्री बनाया गया। गोल्डा मेयर की नाती एलिस कोलंबो, जो कि इस समय अमेरिका में रहती हैं, बताती हैं।
She was very grandmother like to everybody in Israel. I mean, look how she dressed, wearing those orthopedic black shoes.
वो पूरे इसराइल के लिए दादी अम्मा की तरह थी। ध्यान दीजिए, वो किस तरह के कपड़े पहनती थी। उनके जूते हमेशा काले होते थे और वो जहां भी जाती थी उनके हाथ में उनका पुराना हैंडबैग होता था। वो चेन स्मोकर थी और उनके सिगरेट में कोई फिल्टर नहीं होता था। वो अक्सर लोगों से अपनी रसोई में चाय पीते हुए मिलती थी, जिसे उन्होंने खुद बनाया हुआ होता। वो पुरुषों की घड़ी पहनती थी और अपने हाथ से सेब काटकर अपने मेहमानों को खिलाती थी।
1972 में एलिस काम करने इसराइल गई तो अपनी नानी प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर के घर ठहरी। उनको उनकी ख्याति का अंदाजा तब हुआ जब वो उनके साथ एक कॉन्सर्ट देखने एक ऑडिटोरियम में गईं।
We entered from the back of the auditorium. The minute we hit the aisle and started walking towards our seat, the entire audience sensed that Golda was in the room.
हम ऑडिटोरियम में पीछे के दरवाजे से घुसे। जैसे ही हम बीच में आए और अपनी सीट की तरफ जाने लगे, लोगों को पता चल गया कि गोल्डा उनके बीच आ चुकी हैं। वो सब खड़े हो गए और जोर जोर से उनका नाम चिल्लाने लगे।
1971 में वो प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार अमरीका गईं, जहां अमरीका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन उनके बातचीत करने के अंदाज से बहुत प्रभावित हुए। बाद में उन्होंने अपनी आत्मकथा RN द मेमोयर्स ऑफ रिचर्ड निक्सन में लिखा।
मुझे अच्छी तरह याद है जब हम दोनों ओवल ऑफिस की कुर्सियों पर बैठे और फोटोग्राफर हमारी तस्वीरें लेने के लिए आए तो गोल्डा मुस्कुरा रही थी और दोस्ती भरी बातें कर रही थी। जैसे ही फोटोग्राफर कमरे से विदा हुए, उन्होंने अपने दाएं पैर के ऊपर अपना बायां पैर रखा, सिगरेट सुलगाई और बोली, मिस्टर प्रेसिडेंट, आप बताइए, आप उन विमानों के बारे में क्या करने जा रहे हैं जिनकी हमें बहुत सख्त ज़रूरत है। गोल्डा मेयर का व्यवहार एक पुरुष की तरह था और वो चाहती थी कि उनसे पुरुषों की तरह ही सलूक किया जाए।
1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान गोल्डा मेयर ने गुप्त रूप से भारत को सैनिक सहायता पहुंचाई थी, जबकि दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध नहीं थे। अमरीकी पत्रकार गैरी जे बास ने नेहरू लाइब्रेरी में रखे हक्सर पेपर्स का हवाला देते हुए अपनी किताब ब्लड टेलीग्राम में लिखा है,
पीएन हक्सर के प्रयासों के बाद इसराइली प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने एक इसराइली शस्त्र विक्रेता श्लोमो जाब लुदोविक्स को पत्र लिखकर भारत को मोर्टार और कुछ हथियार पहुंचाने के लिए राजी किया था। इन हथियारों के साथ कुछ इसराइली प्रशिक्षक भी भारत भेजे गए थे। मेयर ने इच्छा प्रकट की थी कि इसके बदले भारत इसराइल को राजनीतिक मान्यता दे, लेकिन भारत ने विनम्रतापूर्वक उस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया था। लेकिन 20 साल बाद नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत और इसराइल के बीच राजनीतिक संबंध स्थापित हुए थे।
1972 में जब म्यूनिख ओलंपिक में अरब चरमपंथियों ने 11 इसराइली ओलंपिक खिलाड़ियों को मार डाला तो उन्होंने मोसाद के एजेंटों को आदेश दिया कि इस अपराध करने वाले हर व्यक्ति को, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, चुन चुन कर मारा जाए। इस ऑपरेशन को रैथ ऑफ गॉड का नाम दिया गया। इस ऑपरेशन पर एक किताब वन डे इन सितंबर लिखने वाले साइमन रीव लिखते हैं।
गोल्डा मेयर ने जनरल अहरून यारीव और जुई जमीर को अपने घर बुलवाया। उन्होंने पहले यहूदी लोगों की त्रासदी और जर्मनी में उनके साथ किए गए सलूक का जिक्र किया। फिर उन्होंने म्यूनिक का जिक्र किया जहां 11 मासूम इसराइली खिलाड़ियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। फिर उन्होंने एक आह भरी, अपना सिर उठाकर यारीव और जमीर की आंखों में सीधे देख मजबूत और साफ आवाज में कहा, सेंड फॉर द बॉयज।
1973 में मिस्र और सीरिया ने इसराइल के सबसे पवित्र दिन योम किप्पूर के दिन इसराइल पर हमला बोल दिया। कई लोगों ने कहा कि इस हमले को न रोक पाना गोल्डा मेयर की एक बहुत बड़ी असफलता थी। किंग्स कॉलेज लंदन के युद्ध अध्ययन विभाग के डॉक्टर एरिक ब्रैगमैन, जो कि इसराइली सेना में काम कर चुके हैं, बताते हैं,
शी बिलीव्ड दैट टाइम इज ऑन इजराइल्स साइड, दैट ओनली इफ इजराइल सिट टाइट।
गोल्डा को विश्वास था कि समय इसराइल के साथ है, अगर इसराइल धीरज रखे तो थोड़े दिनों में अरब इस बात के आदि हो जाएंगे कि साइनाई इसराइल का हिस्सा है और गोलान हाइट्स और पश्चिमी किनारा भी इसराइल का ही एक भाग है। मेरा ख्याल है कि उनकी ये सोच गलत थी। मैं एक नेता से उम्मीद करता हूँ कि उसकी नज़र उन चीज़ों पर जाए जिनकी तरफ हम जैसे साधारण लोगों का ध्यान नहीं जाता। मेरे विचार से उन्होंने 1971 में अरबों के दिए गए प्रस्ताव को मान लिया होता तो योम किप्पुर की लड़ाई नहीं होती, जिसमें इसराइल के करीब 3,000 सैनिक मारे गए। हमारे लिए वो एक दिल दहला देने वाली घटना थी।
इसराइल को 6 घंटे पहले ही पता चल गया था कि मिस्र और सीरिया उस पर हमला करने वाले हैं, लेकिन इसका जवाब किस तरह दिया जाए उस पर इसराइली सेना के शीर्ष नेतृत्व में मतभेद थे। गोल्डा मेयर अपनी आत्मकथा माय लाइफ में लिखती हैं,
डाडो पहले हवाई हमला करने के पक्ष में थे क्योंकि ये साफ हो चला था कि लड़ाई तो होनी ही है। उन्होंने कहा कि हमारी वायु सेना दोपहर तक हमला करने के लिए तैयार होगी, बशर्ते आप इसी समय इसका आदेश दें। लेकिन मैंने पहले से ही अपना मन बना लिया था। मैंने कहा, डाडो, मैं इसके खिलाफ हूँ। हमें भविष्य के बारे में कुछ नहीं पता। हो सकता है हमें बाहरी मदद की जरूरत हो, लेकिन अगर हम पहले हमला करते हैं तो हमें बाहर से कुछ नहीं मिलेगा। मैं इस प्रस्ताव को दिल से हाँ कहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें ना कहना पड़ रहा है।
उन दिनों का एक और चित्रण एलिनोर बर्केट ने गोल्डा की जीवनी में खींचा है।
मोशे दयान दौड़ते हुए गोल्डा के दफ्तर में घुसे और बोले, गोल्डा, मैं गलत था, हम बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं, आप चाहें तो मेरा इस्तीफा ले लीजिए। गोल्डा ने इनकार कर दिया। जैसे ही दयान गए, गोल्डा एक हॉल में चली गईं। उनके सहयोगी लू कार्डर ने देखा कि वो रो रही थीं। वो बोली, दयान हथियार डालने के बारे में कह रहे हैं, तुम मेरे एक दोस्त के घर जाओ, वो डॉक्टर हैं, मैं उनसे कहूंगी कि वो तुम्हें कुछ गोलियां दे दें जिनसे मैं अपने आप को मार सकूं, ताकि मैं जिंदा अरबों के हाथ न पड़ सकूं।
योम किप्पूर युद्ध में भले ही आखिरी जीत इसराइल की हुई हो, लेकिन उसके 3,000 सैनिक इस युद्ध में खेत रहे और ये परिकल्पना हमेशा के लिए धराशायी हो गई कि उसे कभी नहीं हराया जा सकता। गोल्डा मेयर को समय से पहले अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। मैंने इसराइल में रह रहे भारतीय पत्रकार हरेंद्र मिश्रा से पूछा कि उनकी मौत के 40 साल बाद इसराइल के लोग उन्हें किस तरह से देखते हैं।
देखिए, इसराइल में दो खेमे हैं। एक खेमा ऐसा है जो कि उन्हें बहुत ही मजबूत इरादे का नेता बताता है, कि वो बड़ी बेबाकी से, बड़े स्पष्ट तौर से अपनी बात को रखती थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन यहूदी कौम के लिए उन्होंने त्याग किया, या फिर इस राष्ट्र को निर्माण में या राष्ट्र को मजबूत बनाने में उनका जो योगदान है उसके ऊपर लोग काफी जोर देते हैं। यहूदी राष्ट्र के निर्माण के पहले ही काफी कुछ पैसे भी उन्होंने इकट्ठा किए, वो कई बार अमेरिका गईं, उस योगदान को लोग नहीं भुला पाते। लेकिन एक यहाँ पर छोटा सा खेमा वैसा भी है जिसे काफी उनसे शिकायत भी है। ये खेमा है उन यहूदियों का जो कि एशिया और नॉर्थ अफ्रीका के राष्ट्रों से यहाँ पर आए, जिन्हें यहाँ पर मिजराकी या फिर शेफाडी यहूदी के तौर पर संबोधित किया जाता है। और ये जो खेमा है उसकी शिकायत ये है कि वो किसी हद तक उन्हें उन पर एक तरह का रेसिज्म का भी चार्ज लगाते हैं। वो ये कहते हैं कि गोल्डा मेयर नहीं चाहती थी कि इस तरह के लोग जो हैं, जो एशिया और अफ्रीकन डिसेंट के, वो इसराइल में बहुत ज्यादा आए। लेकिन एक बात जो स्पष्ट है जिसको लेकर के यहाँ पर जो है उनकी काफी निंदा होती है, वो ये है कि इसराइल जो है उसे यहूदी राष्ट्र के तौर पर लोग यहाँ पर देखते हैं, भले ही वो घोषित यहूदी राष्ट्र ना हो। लेकिन यहाँ पर एक अलिखित नियम यह है कि कोई भी यहूदी जो है, चाहे वो जहां भी रह रहा हो दुनिया में, वो इसराइल आ सकता है, यहाँ इमिग्रेट कर सकता है। लेकिन गोल्डा मेयर जो है उन्होंने स्पष्ट तौर पर पोलैंड और कई ऐसे राष्ट्रों को यह संकेत दिया था कि उस तरह के यहूदी जो कि अब यहाँ पर जो इररिलेवेंट हो चुके हैं, जो कि यहाँ के वर्कफोर्स में आकर के खुद को नहीं सम्मिलित कर पाएंगे, उस तरह के लोगों को न आने की इजाजत दी जाए। इसको भी लेकर के उनकी जो है थोड़ी निंदा होती रही है। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर लोग जो हैं उन्हें एक बहुत ही मजबूत इरादे के नेता के तौर पर देखते हैं।
75 साल की उम्र में भी गोल्डा मेयर 25 साल की युवती की तरह काम करती थीं और उनका दिन सुबह 4 बजे समाप्त होता था। गोल्डा मेयर अपनी आत्मकथा माई लाइफ में लिखती हैं।
कभी कभी मेरे निवास के बाहर तैनात अंगरक्षक देखते थे कि सुबह 4 बजे भी मेरी रसोई में लाइट जली हुई है। उनमें से एक ये देखने के लिए अंदर आता था कि मैं ठीक ठाक तो हूँ ना। मैं हम दोनों के लिए चाय बनाती थी और हम तब तक अलग अलग विषयों पर बात करते रहते जब तक मुझे नहीं लगता कि अब मुझे सोने जाना चाहिए।
गोल्डा मेयर का सबसे अच्छा आकलन एडविना करे ने किया है। इनका मानना है कि गोल्डा एक इंसान थी जिनमें कुछ खराबियों के साथ साथ बहुत सारी अच्छाइयां भी थी।
I think there are people who kind of like to invent a wonderful leader, the perfect leader who was everything. But real leaders are real people, and they have
इस तरह के लोग दुनिया में हैं जो एक महान नेता को इजाद करना चाहते हैं, इस तरह का नेता जिसमें कोई खोट ना हो। लेकिन वो असली लोगों का नेता नहीं होता, क्योंकि लोगों में अच्छाइयों के साथ साथ कुछ कमियां भी होती हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर हम उनकी तारीफ करें तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उन्हें बेहतर ढंग से समझ पा रहे हैं। गोल्डा भावपूर्ण थी, अपने देश के लिए प्रतिबद्ध थी, कठोर थी और हालात से समझौता करना उनके व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं था। हाँ, उनसे भी कुछ गलतियां हुई, लेकिन वो एक असली इंसान थी। वो महिला नहीं थी जिसका रोल किसी स्क्रिप्ट राइटर ने लिखा था।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
विवेचना पर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। और आपको बता दें कि आईपीएल में आज किंग्स इलेवन पंजाब और मुंबई इंडियंस का मुकाबला है इंदौर में। टॉस मुंबई ने जीता है और गेंदबाजी चुनी है। और चलते चलते मुख्य समाचार आदर्श राठौर से।
बीबीसी समाचार। इस साल साहित्य का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा क्योंकि विजेताओं को चुनने वाली स्वीडिश अकादमी एक सेक्स स्कैंडल में फंस गई है। इराक के शीर्षिया धर्मगुरु अयातुल्ला अली सिस्तानी ने मतदाताओं से अपील की है कि अगले हफ्ते होने जा रहे चुनावों में भ्रष्ट नेताओं को न चुने। चेक रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रपति मिलो जेमन की टिप्पणी पर स्पष्टीकरण दिया है। जेमन ने कहा था कि पूर्व रूसी जासूस सरगेई स्क्रिपल पर हमले में इस्तेमाल किए गए नर्व एजेंट जैसा ही एक केमिकल पिछले साल उनके देश में तैयार किया गया था। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने यहूदियों और होलोकॉस्ट के बारे में दिए अपने बयान की आलोचना होने के बाद खेद प्रकट किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने इस बात से इनकार किया है कि राष्ट्रपति ने दक्षिण कोरिया में मौजूद अमरीकी सैनिक हटाने के लिए कहा है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे राजेश चौहान। फेसबुक प्रसारण में मदद की मीना कोटवाल ने। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com। वात्सल्य राय का नमस्कार।